उद्घाटन नैरेशन अनिवार्य। उद्घाटन नैरेशन अनिवार्य। एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज ग्रंथ सार में हम एक ऐसी कृति की दुनिया में उतर रहे हैं जो महज एक उपन्यास नहीं बल्कि कह सकते हैं कि बांग्ला साहित्य और सिनेमा का एक मील का पत्थर है।
हाँ बिल्कुल,
हम बात कर रहे हैं विभूति भूषण बंद्योपाध्याय के अमर उपन्यास पाथेर पंचाली की, यानी छोटी सड़क का गीत। एक ऐसा गीत जो खुशी भी सुनाता है और गहरा दर्द भी।
बिल्कुल, और विभूति भूषण बंद्योपाध्याय मतलब 1894 से 1950 तक वो कोई महज कल्पना की उड़ान भरने वाले लेखक नहीं थे।
नहीं नहीं,
वो जमीन से जुड़े इंसान थे, एक शिक्षक थे जिन्होंने ग्रामीण बंगाल के जीवन को बहुत बहुत नजदीक से जिया और महसूस किया था। उनकी खूबी यही थी कि वो रोजमर्रा की साधारण जिंदगी में छुपे असाधारण पलों को, प्रकृति की आत्मा को अपनी लेखनी से पकड़ लेते थे।
और उनकी भाषा, उसमें एक अजीब सा जादू है ना, मतलब काव्यात्मक भी है और एकदम सच्ची यथार्थवादी भी, जैसे वो जिंदगी को बिल्कुल सामने रख रहे हों बिना किसी लाग लपेट के।
सही कहा।
पाथेर पांचाली 1929 में आया उनका पहला उपन्यास, और इसने उस दौर के बांग्ला साहित्य में जैसे एक नई लहर पैदा कर दी, किरदारों के मन की दुनिया और बाहरी सच्चाई पर ध्यान देकर।
हाँ, और यही उपन्यास आगे चलकर मशहूर अपू त्रयी की पहली कड़ी बना, मतलब तीन उपन्यासों की वो श्रृंखला जो अपू नाम के एक बच्चे के बचपन से लेकर उसके बड़े होने तक की कहानी कहती है।
अच्छा, हाँ, अपू त्रयी।
और फिर 1955 में सत्यजीत रे ने जो फिल्म बनाई, उसने तो इस कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। आज ये उपन्यास बांग्ला संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है।
तो आज की हमारी ये बातचीत इसी दुनिया के इर्द गिर्द घूमेगी, निश्चिंदीपुर नाम का वो काल्पनिक गांव, वहां बसने वाला रॉय परिवार, उनके सपने, उनके संघर्ष, हम कहानी के उतार चढ़ाव, किरदारों के मन की यात्रा और उपन्यास के गहरे संदेशों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए उस जर्जर होते पुश्तैनी घर और उसमें बसते किरदारों से मिलते हैं।
हाँ, तो कहानी का दिल है रॉय परिवार। मुखिया हैं हरिहर रॉय, एक पुजारी, नेक इंसान है, लेकिन क्या कहें, दुनियादारी निभाने में थोड़े कच्चे।
हाँ,
सपने बड़े देखते हैं, पर घर चलाने की जिम्मेदारी का बोझ अक्सर उनकी पत्नी सर्वजया के कंधों पर आ जाता है।
सर्वजया गरीबी से लड़ती एक मजबूत इरादों वाली औरत है, जिसके प्यार में ममता भी है और हालात की कड़वाहट भी झलकती है।
और उनके बच्चे अप्पू, जो काफी संवेदनशील और कल्पनाशील है, और उसकी बड़ी बहन दुर्गा, वो तो जैसे जिंदगी की चंचलता और बेफिक्री का प्रतीक है।
बिल्कुल, साथ ही है एक बूढ़ी रिश्तेदार इंदिर ठकुरुन, जो जैसे गुजरे जमाने की एक धुंधली याद की तरह परिवार के साथ रहती है। उनका वो पुराना टूटता हुआ घर, वो सिर्फ ईंट गारे का ढांचा नहीं लगता है ना,
हाँ,
वो उनके घटते भाग्य का आईना सा लगता है।
हाँ बिल्कुल सही कहा।
और इस उपन्यास की खासियत ये है कि इसमें कोई सीधी सपाट कहानी या कोई एक बड़ा लक्ष्य नहीं है जिसे पाना है।
अच्छा, ये तो जीवन के बहाव जैसा है, कभी छोटी सी खुशी मिल गई, कभी कोई गहरी खोज हो गई, कभी दिल को झकझोर देने वाला दुख आ गया। ये सब कुछ हमें ज्यादातर अपू और दुर्गा की मासूम आंखों से देखने को मिलता है।
तो क्या हम कह सकते हैं कि मूल संघर्ष बस जिंदा रहने और अपना सम्मान बचाने का है, गरीबी और शायद किस्मत के खिलाफ? पिता उम्मीदें पाले रखते हैं, माँ असलियत से जूझती है, ये सब।
हाँ हाँ बिल्कुल, यही बुनियादी कश्मकश है। हरिहर बेहतर दिनों के सपने देखते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, दूर दराज जाते हैं काम की तलाश में, लेकिन आमदनी नाकाफी रहती है। सर्वजया घर चलाती हैं, बच्चों की चिंता करती हैं, और ये चिंता कभी कभी उनके स्वभाव में कड़वाहट घोल देती है। उपन्यास जैसे पूछता है, इतने अभाव और नुकसान के बीच भी क्या जिंदगी में कोई खूबसूरती, कोई अर्थ, कोई उम्मीद खोजी जा सकती है? ये इंसान की हिम्मत की कहानी है, बच्चों के नजरिए की, और हाँ, यादों की ताकत की कहानी है।
किरदारों की बात करें तो अप्पू जैसे कहानी का केंद्र बिंदु है ना? उसकी नजर से ही हम बहुत कुछ देखते और महसूस करते हैं।
हाँ, अपूर्व कुमार रॉय यानी अप्पू, वो एक बहुत ही संवेदनशील, कल्पनाशील बच्चा है। कहानी की शुरुआत में उसकी दुनिया वो जादू और आश्चर्य से भरी है। वो प्रकृति के रंगों में खोया रहता है, लोक कथाएं सुनता है, हर नई चीज उसे आकर्षित करती है। लेकिन धीरे धीरे वो परिवार के संघर्षों, पैसों की तंगी और फिर बहुत गहरे दुख का अनुभव करता है। उसकी ये यात्रा मासूमियत से समझ की ओर एक धीमी, कह सकते हैं दर्दनाक यात्रा है।
और इस यात्रा में उसकी साथी, उसकी बड़ी बहन दुर्गा का क्या कहना? दोनों का रिश्ता तो जैसे उपन्यास की जान है।
बिल्कुल, दुर्गा तो जैसे जिंदगी की बेलगाम ऊर्जा है, थोड़ी जंगली सी, आजाद ख्याल। प्रकृति उसे बुलाती है, उसकी इच्छाएं भी कितनी छोटी छोटी हैं। कभी पेड़ से फल तोड़कर खाने की इच्छा, कभी एक अच्छी सी साड़ी पहनने की, कभी गले में एक सुंदर सा हार डालने की। वो बेचैन है, हमेशा कुछ ना कुछ खोजती रहती है।
लेकिन इन्हीं छोटी इच्छाओं की वजह से उस पे फल चोरी का इल्जाम भी लगता है, जो परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनता है। ये देखना कितना दुखद है कि उसकी वो मासूम इच्छाएं भी कैसे शक के दायरे में आ जाती हैं।
और यही चीज उसकी कहानी को और भी मार्मिक बना देती है। उसकी यात्रा दुखद रूप से बहुत छोटी है। मानसून की तेज बारिश में भींगने के बाद वो बीमार पड़ती है और गरीबी के कारण सही इलाज न मिल पाने से उसकी मौत हो जाती है। वो हमेशा के लिए एक बच्ची ही रह जाती है, अप्पू के जीवन में एक कभी ना मिटने वाली याद बनकर।
इन बच्चों की माँ सर्वजया, वो बहुत ही उलझा हुआ किरदार लगती हैं। एक तरफ ममता है, दूसरी तरफ हालात की मार से पैदा हुई कठोरता।
सही कहा, सर्वजया एक जटिल और दुखद पात्र है। उसकी पूरी जिंदगी का केंद्र अपने बच्चों का पेट पालना है, उन्हें सुरक्षित रखना है। वो बेशक प्यार करती है, लेकिन लगातार की गरीबी और चिंता उसे थका देती है, चिड़चिड़ा बना देती है।
हाँ,
बच्चों के साथ उसका रिश्ता प्यार भरा तो है, पर उसमें एक तनाव हमेशा बना रहता है।
इतनी कठोर हो जाती है, लगता है जैसे अपनी हताशा वो उन पर निकाल रही हो।
बहुत हद तक ऐसा ही है। इंदिर ठकुरून के प्रति उसकी कठोरता उसी बेबसी और हताशा से उपजती है। सर्वजया उस कठोर सच्चाई का प्रतीक है जो अपू और दुर्गा के सपनों भरी दुनिया में बार बार सेंध लगाती है।
और पिता हरिहर, वो जैसे दूसरी ही दुनिया में रहते हैं, कोमल हैं, पढ़े लिखे हैं, पर इस दुनिया की जरूरतें शायद वो पूरी करने में नाकाम है।
हरिहर एक अच्छे इंसान की त्रासदी हैं, कह सकते हैं। वो परिवार को प्यार करते हैं, उनका भला चाहते हैं, खोया सम्मान वापस पाना चाहते हैं, लेकिन उनके तरीके अव्यवहारिक हैं। वो कविताएं पढ़ते हैं, शास्त्रीय ज्ञान की बातें करते हैं, बेहतर भविष्य के सपने बुनते हैं, जबकि घर में चूल्हा मुश्किल से जलता है। उनकी यात्रा लगातार नाकामी की यात्रा है।
शायद दुर्गा की मौत के बाद ही उन्हें अपनी नाकामी का पूरा एहसास होता है ना, वो एक तरह से टूट जाते हैं।
दुर्गा की मृत्यु जैसे उन्हें हकीकत की जमीन पर पटक देती है, उन्हें अपनी असफलता का बोझ कुचलने लगता है। वो उस नेक इंसान का प्रतीक है जो हालातों के आगे बेबस है।
और उस परिवार का एक और अहम हिस्सा है इंदिर ठकुरून, बूढ़ी, अकेली, अतीत की कहानियों और गीतों की पोटली।
इंदिर ठकुरून गुजरे हुए वक्त और बुढ़ापे के अकेलेपन का जीता जागता प्रतीक हैं। वो बच्चों, खासकर दुर्गा से बहुत स्नेह रखती हैं। उनकी बस एक ही चाहत है, जिंदगी के आखिरी दिन थोड़े सम्मान से कट जाएं।
बस इतनी सी।
लेकिन एक छोटे से इल्जाम पर जब सर्वजया उन्हें घर से निकाल देती है और फिर जंगल में उनकी अकेली मौत होती है, वो बहुत हृदय विदारक है। वो जैसे उन सभी भूले बिसरे त्यागे हुए लोगों का और परिवार के इतिहास में दबे गहरे दुख का प्रतीक बन जाती हैं।
इन किरदारों के जीवन की कहानी आगे कैसे बढ़ती है? क्या कोई खास घटनाएं हैं जो कहानी को मतलब दिशा देती हैं?
जैसा हमने कहा, यह पारंपरिक कहानी जैसा नहीं है, बल्कि जीवन के टुकड़ों को जोड़कर बनी एक तस्वीर है। शुरुआत में हम परिवार की गरीबी, जर्जर घर और इंदिर ठकुरून के साथ सर्वजयों के तनाव को देखते हैं।
हाँ।
हरिहर अक्सर काम की तलाश में बाहर रहते हैं। गांव की जिंदगी की छोटी छोटी झलकियां हैं, मिठाई वाला, बच्चों के खेल, पड़ोसियों से लेन देन। इंदिर और दुर्गा का गहरा रिश्ता पनपता है। फिर वो दुखद घटना होती है जब सर्वजया इंदिर को घर से निकाल देती हैं। वो लौटती हैं, पर कुछ समय बाद उनकी मौत हो जाती है। ये जैसे भविष्य में आने वाली बड़ी त्रासदियों का एक मौन संकेत है।
यहीं पर गरीबी का असर रिश्तों पर साफ दिखने लगता है। कैसे अभाव इंसान को कठोर बना सकता है और बुढ़ापे की निर्भरता कितनी मुश्किल हो सकती है, ये शुरू से ही कहानी में मौजूद है।
बिल्कुल। फिर अप्पू के जन्म और उसके बड़े होने के साथ कहानी का फोकस अप्पू और दुर्गा के अटूट रिश्ते पर आ जाता है। गरीबी के बावजूद उनकी अपनी एक जादुई दुनिया है।
हाँ।
बांस के झुरमुट उनके लिए जंगल हैं, तालाब समंदर। वो घूमती फिरती नाटक मंडलियों को बड़े चाव से देखते हैं। आपस में आम, बेर या इमली जैसे छोटे छोटे खजाने बांटते हैं।
हाँ, खजाने।
अपू स्कूल जाना शुरू करता है, पर उसकी असली पढ़ाई तो जैसे दुर्गा की सोहबत में और प्रकृति के बीच होती है।
और वो ट्रेन की सीटी की आवाज, वो बार बार आती है ना, जैसे किसी दूसरी दुनिया का बुलावा।
हाँ, वो ट्रेन की सीटी वो एक उम्मीद की तरह है, एक रहस्य की तरह, अज्ञात का प्रतीक, इस बंधे मंधाए जीवन से कहीं दूर निकल जाने का एक मासूम सपना। उनका छिपकर पहली बार ट्रेन देखने जाना वो क्षण उनके लिए शुद्ध आनंद का है, एक ऐसी दुनिया की झलक जो उनकी पहुंच से बाहर है।
ये बचपन के उस आश्चर्य और बाहर की कठोर दुनिया के बीच का तनाव दिखाता है। ट्रेन यहाँ एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाती है, उस अनजान भविष्य का, उस पलायन का जिसकी शायद उन्हें जरूरत महसूस होती है।
उतियों का हार चुराने का झूठा इल्जाम लगाते हैं, ये परिवार के लिए बहुत अपमानजनक होता है। सर्वजया गुस्से में दुर्गा को बहुत बहुत मारती है। इस घटना के बाद दुर्गा की वो छोटी छोटी चीजों की चाहत और भी चुभने लगती है।
हाय।
उसकी कल्पना की दुनिया और समाज की कठोर सच्चाई का टकराव यहाँ बहुत साफ नजर आता है।
गरीबी कैसे सिर्फ पेट ही नहीं इज्जत पर भी चोट करती है, ये यहाँ बहुत साफ दिखता है। और समाज का रवैया भी कितना निर्मम हो सकता है।
इसके बाद उपन्यास का सबसे त्रासद मोड़ आता है, चौथा भाग। भयंकर मानसून आता है, गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं, परिवार अपने टपकते हुए घर में फंसा है।
ओह नो।
दुर्गा, जिसे बारिश में भीगना नाचना पसंद था, इसी बारिश में भीगकर बुरी तरह बीमार पड़ जाती है। पैसे की तंगी के कारण सही दवा दारू नहीं हो पाती। हरिहर फिर घर से दूर हैं और एक तूफानी रात में दुर्गा की मौत हो जाती है। ये कहानी का दिल तोड़ देने वाला पल है।
और हरिहर जब लौटते हैं उनके हाथ में तो वो साड़ी थी।
हाँ, हरिहर जब लौटते हैं तो उनके हाथ में दुर्गा के लिए लाई वो नई साड़ी होती है जिसका उन्होंने वादा किया था। लेकिन घर पर उनका सामना होता है सर्वजाया के खामोश पथराए हुए दुख से। कुछ समय बाद अपू को दुर्गा की गुड़िया के बक्से में वही मोतियों का हार मिलता है जिसे दुर्गा ने चुराया नहीं था, बल्कि कहीं से पाया था और सहेज कर रखा था।
अच्छा।
वो पल अपू के लिए अपनी बहन की उन छोटी मासूम अधूरी रह गई इच्छाओं को समझने का एक गहरा खामोश क्षण होता है।
प्रकृति यहाँ कितनी शक्तिशाली है, जीवन देने वाली बारिश ही विनाश का कारण बन जाती है। और वो साड़ी और हार कितने गहरे प्रतीक हैं अधूरी इच्छाओं के, खोई हुई मासूमियत के। ये हानि जैसे अनिवार्य लगती है और उसका बोझ कुचल देने वाला।
और यही हानि परिवार को तोड़ देती है। अंतिम भाग, पांचवा भाग, दुर्गा की मृत्यु के बाद शुरू होता है। अब निश्चिंदीपुर और वो पुश्तैनी घर सिर्फ दर्दनाक यादों का डेरा है। हरिहर, जो अब तक उम्मीद पाले हुए थे, आखिरकार हार मान लेते हैं। वो गांव छोड़कर काशी यानी वाराणसी जाने का फैसला करते हैं, एक नई शुरुआत की तलाश में।
अच्छा।
आखिरी पन्ने, परिवार के सामान बांधने, गांव से विदा लेने और बैलगाड़ी में बैठकर चले जाने का वर्णन करते हैं। अपू पीछे मुड़कर अपने घर, अपने गांव, अपने बचपन को आखिरी बार देखता है। अब छोटी सड़क का गीत खुशी का नहीं बल्कि असहनीय दुख से निकलने का एक उदास मगर जरूरी रास्ता बन जाता है। उपन्यास एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ते हुए खत्म होता है।
यहाँ आकर शीर्षक पाथे पांचाली का अर्थ कितना बदल जाता है। जो सड़क कभी रोमांच और खुशी का वादा लगती थी, अब वो दुख से पलायन का रास्ता है। घर छूट रहा है, बचपन पीछे रह गया है।
हाँ।
चलिए अब थोड़ा रुककर उपन्यास के मुख्य विषयों पर और गहराई से बात करते हैं। गरीबी और मानवीय गरिमा का सवाल तो शायद सबसे बड़ा है इसमें।
बिल्कुल। उपन्यास ये नहीं कहता कि गरीबी अच्छी चीज है, बल्कि दिखाता है कि ये कैसे जिंदगी को मुश्किल बनाती है, रिश्तों में तनाव लाती है, जैसे सर्वजाया की कठोरता या हरिहर की लाचारी। लेकिन ये भी दिखाता है कि गरीबी इंसान की बुनियादी अच्छाई या गरिमा को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाती।
हाँ, ये बात है।
एक जगह शायद कहा भी गया है, गरीबी बुखार की तरह है, सब कुछ जला देती है, यहाँ तक कि प्यार भी। ये दर्शाता है कि गरीबी रिश्तों को कैसे बीमार कर सकती है, पर शायद खत्म नहीं। गरिमा बचाने का संघर्ष हमेशा चलता रहता है।
और दूसरा बड़ा द्वंद है बचपन की वो जादुई दुनिया और बाहर की कठोर सच्चाई के बीच का।
जी।
अपू और दुर्गा की अपनी कल्पना की दुनिया है, लेकिन भूख, बीमारी, सामाजिक तिरस्कार बार बार उसमें दखल देते हैं।
हाँ।
मासूमियत का धीरे धीरे खो जाना ये बहुत मार्मिक है।
और इसमें प्रकृति की भूमिका भी बहुत बहुत अहम है। वो सिर्फ पीछे का पर्दा नहीं बल्कि एक किरदार की तरह है। बदलते मौसम, मानसून की बारिश, गांव के पेड़ पौधे, बांस के झुरमुट, ये सब किरदारों के मूड और हालात को दर्शाते भी हैं और उन पर असर भी डालते हैं। प्रकृति कभी सुकून देती है तो कभी खतरा बन जाती है।
हाँ।
वो एक आईना भी है और एक साथी भी।
और हानि और बदलाव।
हाँ।
ये तो जैसे जीवन का नियम ही है। इंदिर ठाकुरून की मौत, फिर दुर्गा की मौत और आखिर में घर का छूटना, ये सब जीवन के क्षणभंगुर होने का एहसास कराते हैं।
हाँ।
वो पथ या सड़क जिस पे वो चलते हैं वो शायद समय के इसी निरंतर बहते जाने का प्रतीक है जो सब कुछ पीछे छोड़ता जाता है।
इधर जुड़ा है वो अज्ञात का आकर्षण, वो सड़क जो कहीं और ले जाती है, वो ट्रेन की सीटी जो दूर से बुलाती है।
हाँ, वो सीटी।
ये ठहराव से निकल भागने की, कुछ नया खोजने की एक गहरी मानवीय इच्छा है, भले ही ये इच्छा किसी त्रासदी के बाद ही क्यों ना जागे। वो सीटी जैसे कहती है, पहाड़ियों के पार भी एक दुनिया है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते, पर जहां शायद कुछ अलग हो।
परिवार के भीतर के तनाव भी हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने का बोझ, उसके लिए अपनी इच्छाओं को दबाना और कभी कभी उससे पैदा होने वाली नाराजगी, सर्वजया और हरिहर के रिश्ते में ये दिखता है।
हाँ बिल्कुल, और परंपरा और बदलाव का टकराव भी है। गांव का पारंपरिक जीवन, पुराने रीति रिवाज, कमाई के पुराने तरीके, ये सब बदलते वक्त में नाकाफी साबित हो रहे हैं। रॉय परिवार जैसे दो दुनियाओं के बीच खड़ा है।
हाँ,
यादें भी एक बड़ा विषय हैं। वो पहचान बनाती हैं, सुकून देती हैं, पर कभी कभी बोझ भी बन जाती हैं। स्मृति वरदान भी है और अभिशाप भी, ऐसा कुछ भाव है। और वो पुराना घर जो यादों का प्रतीक है।
लेखक के कहने की शैली भी कमाल की है। वो जैसे किसी एक किरदार का पक्ष नहीं लेते, सबकी भावनाओं को समझते हैं। कहानी टुकड़ों में आगे बढ़ती है, जैसे हमारी यादें काम करती हैं, एक घटना से दूसरी पर कूदते हुए।
सही।
भाषा इतनी सजीव है कि आप उस गांव की गंध, उसकी आवाजें महसूस कर सकते हैं।
और खास बात है उनका संयम, जिसे अल्पकथन कहते हैं। वो बड़ी से बड़ी दुखद घटनाओं को भी बहुत सीधे साधे ढंग से बयान करते हैं, बिना किसी मेलोड्रामा के। और इसी सादगी से उनका असर और भी गहरा होता है, पाठक खुद उस दुख को महसूस करता है।
हाँ, ये बहुत शक्तिशाली है।
प्रतीक भी बहुत सहजता से कहानी में बुने हुए हैं। घर, ट्रेन, मानसून, वो हार, वो कहानी का हिस्सा लगते हैं, अलग से चिपकाए हुए नहीं।
इस उपन्यास को पढ़ते हुए पाठक पर भावनात्मक असर कैसा होता है? क्या चीज है जो हमेशा याद रह जाती है?
इसका असर धीरे धीरे गहरा होता है। आप उस रॉय परिवार को जानने लगते हैं, उनके सुख दुख में शामिल हो जाते हैं। खासकर अपू और दुर्गा से एक गहरा लगाव महसूस होता है। पढ़ने के बाद मन में एक उदास सी खूबसूरती का एहसास रह जाता है।
उदास खूबसूरती?
हाँ, ये समझ आता है कि आम साधारण दिखने वाली जिंदगी में भी कितने गहरे अर्थ, कितनी भावनाएं छुपी होती हैं। दुर्गा की मौत का असर तो बहुत लंबे समय तक रहता है, क्योंकि हमने उसकी जिंदा दिली को इतने इतने करीब से देखा होता है।
हाँ, ये बात सही है, बहुत जीवंत थी वो।
उपन्यास पढ़ने के बाद गरीबी की चुबन, इंसान की हिम्मत और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी खुशी के छोटे छोटे पल ढूंढने लेने की कोशिश के प्रति मन में गहरी हमदर्दी और समझ पैदा होती है। ये कहानी बंगाल के एक छोटे से गांव की होकर भी पूरी दुनिया के इंसानी अनुभव को छू लेती है। दुनिया एक ही वक्त में बहुत बड़ी और अनजान,
ट्रेन की सीटी की तरह
भी लगती है, और बहुत छोटी और अपनी सी,
घर के चूल्हे की तरह। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि पाथेर पांचाली हमें ये सिखाता है कि चाहे हालात कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, इंसान के अंदर प्यार करने, सपने देखने और जिंदगी में खूबसूरती ढूंढने की क्षमता, वो हमेशा बनी रहती है।
हाँ बिल्कुल, और ये हमें याद दिलाता है कि रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी, अक्सर नजरअंदाज कर दी जाने वाली घटनाओं में भी कितना गहरा अर्थ और कितनी सुंदरता छिपी हो सकती है। महान साहित्य सिर्फ बड़ी घटनाओं से नहीं, जीवन की शांत दुख भरी लय से भी जन्म लेता है।
समापन निरेशन, समापन निरेशन, यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।